ஓம் சாந்தி. ये हमारा जीवन जो है ब्राह्मण जीवन ऊंच पे ऊंच है, बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंच है। तो इस जीवन का आधार क्या है? पवित्रता तो आधार है ही है, लेकिन उससे पहले बाबा ने कई बार देखो मुरली में बोला है कि ये जो मुरली है वो हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है, और इस मुरली की भी अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए पवित्रता आवश्यक है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि जैसे शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में ठहरता है, तो पवित्र बुद्धि में ही बाबा की बात मुरली है उसकी धारणा होगी। तो आज बाबा ने मुरली में क्या विशेष विशेष बातें बताई वो कोई एक एक करके कोई बोले। अच्छा है, अब आप विचार करें, बाबा ने बोला है कि बाबा कोई फीस नहीं लेता है पढ़ाई की, तो पढ़ाई की फीस क्यों नहीं लेता है? क्या कारण है? बाबा ने उसमें कारण ही बताए हैं, क्योंकि बाबा ने बताया कि बाप जो है कभी बच्चों बाप बच्चे टीचर बनकर पढ़ाता भी है तो बाप बच्चों से कोई फीस लेगा? तो बाप जो है हमसे कोई फीस नहीं लेता है क्योंकि वो हमारा बाप है। साथ साथ बाबा ने बोला है कि बाबा जो है वो गरीबों को ही पढ़ाता है, तो जो गरीब होते हैं उनको फ्री पढ़ाया जाता है। तो जो है बाप जो है आकर के हमको पढ़ाता है तो हमसे फीस कैसे लेगा? दूसरी बात बाबा ने बोली कि जब बच्चा पैदा होता है तो वर्षे का अधिकारी खुद हो जाता है। तो बाप हमारा, हम बाप के पास जन्म लिया है तो बाप के कर्तव्य है, बाप के है कि हमारी पालना करना, हमारा जैसे हमको आगे बढ़ाना, तो वो फीस हमसे कैसे लेगा? तो वो फीस नहीं लेता है, वो भी उसके बाबा ने कारण बताए हुए हैं। और जहां तक बेंजी ने बोला कि सर्वशक्तियों की धारणा होगी तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे, अब सर्वशक्तियों की धारणा भी कब होगी कैसे होगी वो भी तुमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। तो सर्वशक्तियों की धारणा कैसे होगी, उसके लिए भी बाबा ने हमको क्या रास्ता दिखाया है? तो आप विचार करेंगे तो देखो ज्ञान की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे। और जब जितना ही हमारा अभ्यास बिंदु रूप का पक्का होगा, अशरीरीपन का अभ्यास पक्का होगा, उतनी उतनी हमारे अंदर शक्तियों की धारणा होगी, शक्तियां समय पर काम करेंगी। तो बाबा ने हमको जो बताया है तो जो भी ज्ञान दिया है उसके कॉज एंड इफेक्ट, फैक्ट एंड फिगर सब बताए हुए हैं, उन सब पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कई बार बोलता है कि जो हम सुनाते हैं उस पर विचार करो, विचार करने से उसकी धारणा होगी। और बाबा ने क्या सुनाया, सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और सबसे सहज से सहज सब्जेक्ट क्या है? बाप को याद करना। तो आत्मा समझ करके हम बाप को याद करना सबसे सहज भी है और सबसे कठिन भी है। तो सहज क्यों है? आत्मा सहज बात है, डिफिकल्ट होता है। तो क्योंकि हम लोग देह मान में आदिकल्प से रहे हुए हैं, अब वर्तमान जगत में भी हम देखते हैं कि इधर उधर की बहुत सी बातें हमारी बुद्धि में आती रहती हैं। तो जब तक जो बुद्धि में बातें होंगी तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो कठिन भी है तो सहज भी है, तो सहज से सहज भी है, कठिन से कठिन भी है। और बाबा ने बोला है कि बाबा आकर के तुम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरता है। तो जब हमारी झोली भरी होगी तब तो हमको उसका सुख होगा, और जब झोली भरी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका दान भी करेंगे। तो बाबा ने उसके लिए दोनों बातें बताई हैं कि बाबा अभी हमको जो ज्ञान रत्न देता है उनको तुम धारण करो, अपनी झोली भरो, तो वो झोली और उसके आधार पर तुमको भविष्य में सत्युग में वो रत्न भी बहुत मिलेंगे। लेकिन वर्तमान जगत में जो ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे तब वो रत्न मिलेंगे। यदि हमारी झोली अभी ज्ञान रत्नों से भारी नहीं होगी तो वो रत्न कैसे मिलेंगे, क्योंकि उसका भी प्रोसेस है। कि जब हमको ज्ञान तत्वों की धारणा होगी तो हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारा भविष्य बनेगा। तो उसका आधार भी है बात। तो हमको ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों चीजें बाबा ने बताई हुई हैं। और जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला, बाबा ने आज की मुरली बात, वो भी आपने बात के सही है कि वो जब भरपूर हो तभी हम देंगे, लेकिन आज बाबा ने बोला कि जब तुम दूसरों को ज्ञान सुनाते हो तो उसको देख करके देखो कि उसको ज्ञान की उदाहरण जैसे इफेक्ट करता है, उसके नयन गीले होते हैं, उसका चेहरा कुछ बदलता है, तो तब तब उसके आगे कर दो। लेकिन उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य बाबा ने क्या है कि बाबा की मुरली जो है एक मुरली कैसे है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बाबा की अनेक मुरलियों में बाबा ने अनेक समय पर देश काल और परिस्थितियों को देख करके बातें बोली हुई हैं। तो सब बातें हमारी बुद्धि में रहेंगी तो हमारी को उस समय वो काम करेगी। तो उसके लिए क्या बोला है कि तो वो उसका, जब उसका लब जुटेगा तब है, लेकिन उससे पहले हमारा लब जुटा हुआ होगा, हमारी बुद्धि में बाबा की याद होगी और हम उसको आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे और दूसरे को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के देखेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही सामने वाले की स्थिति परिवर्तन होती है, क्योंकि हम उसके मूल हैं। वो तो सामने वाला तो अज्ञानी है, वो तो अज्ञानी उसी से रहेगा, लेकिन बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, हम ज्ञान देने के तो हम मूल हैं, तो हमको पहले अपनी स्थिति को बनाना पड़ेगा, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जैसे भाई कहता भाई भाई की दृष्टि से हम दूसरे को समझाएंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। हाँ, तो अपनी मनसा भी हमको पावरफुल बनानी है। तो इस तरह से बाबा ने हमको बहुत सी बातें बताई हुई हैं। तो हमको सब मूल्यों को सामने रख करके किसी चीज का निर्णय करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेवा के फील्ड में हम देखते हैं कि कोई भी हमारे से प्रश्न पूछता है तो बाबा ने हमको उससे बचने का अलग ही उपाय बताया हुआ है, यानी हमको नहीं आता है, लेकिन उस उपाय को हम सदा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला है कि तुम उसको किसी को उत्तर नहीं दे सकते, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तुम बोलो कि बाबा ने बात हमको नहीं समझाई है, तो हम जब समझाएगा तो समझाएंगे, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं हरेक को, हर समय कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आप देखें कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना है तो जरूर बाबा ने सब बातें समझाई हैं। यदि सब बातें नहीं समझाई होती तो ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं बन सकता था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं हर समय कि हम उसके से बोल सकते हैं, लेकिन हर समय हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि बाबा ने हमको समझाई नहीं है। लेकिन इस वास्तविकता ये है कि बाबा ने तो समझाई है, लेकिन हमने उसको नहीं समझा है, वो हमारे समय अनुसार हमारी बुद्धि में नहीं आई है। और अब वर्तमान समय की हम मूल्यों को हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी वही पॉइंट मिलती दिखाई पड़ता सामने आती है, जो कि हमने मूल्य जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं कम से कम 10-11 बार रिवाइज हो चुकी है तो अभी हमारी बुद्धि में बात नहीं आई, तो हमारी बुद्धि में वो बात नहीं आई है। ये हमारे को बुद्धि में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम हर बात में ये बोल रहे हैं कि बाबा ने हमको समझाई नहीं, यदि हम ये बात बोल देते हैं तो भी हमसे पूछा जाए तो हम तो कहते हैं कि यार ज्ञान का भी डिसरिगार्ड हो जाता है और बाबा का भी डिसरिगार्ड हो जाता है, क्योंकि बाबा ने समझाई और हमको तो बाबा ने समझाई नहीं है तो डिसरिगार्ड हो गया है ना। अच्छा, बाबा ने समझाई है और हम कहते हैं कि हमने नहीं तो हम डिसरिगार्ड, तो हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके हम ये कह सकते हैं कि वो बात हमने नहीं अभी तक समझी है, हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो इसलिए हमने नहीं समझी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भगवान समझाई नहीं है। तो इस तरह की कई बातें जो होती हैं इनको हम बुद्धि में विचार करें, बाबा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बाबा बोलता है तो उन बातों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप विचार करें कि ये वर्तमान जीवन जो है हमारा किन किन प्राप्तियों से किन किन अनुभूतियों से परिपूर्ण है। आप कई बार बाबा ने बोला है कि प्रत्यक्ष फल जो है वो भविष्य फल से भी श्रेष्ठ है। तो प्रत्यक्ष फल क्या है, वास्तविकता को देख विचार करेंगे तो देखो प्रत्यक्ष फल है कि परम आनंद, परम शांति, परम सुख की अनुभूति जो है वो संगमयुग की प्राप्ति है। वो सत्ययुग प्राप्ति नहीं होगी, सत्ययुग में भौतिक सुख होंगे, अथाह सुख होंगे, लेकिन जो परम सुख, परम आनंद, परम शांति की जो अनुभूति है वो सत्ययुग में नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष फल जो है संगमयुग का है। और बाबा ने ये भी बोला है कि जब बाप कई बार कई अलग अलग टाइम में बोला है कि बाबा ने जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी तो अभी देगा ना, तो ये जो है प्रत्यक्ष फल जो है वो बाबा का रियल वर्षा है। भविष्य वर्षा तो उस वर्षे के आधार पर हमको मिलेगा ही। तो अब हमको जो प्रत्यक्ष फल है उसको अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक है? देखो, आप देखेंगे कि हठ योग के अंदर भी निर्संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का वर्णन है। निर्संकल्प अवस्था में हम जब होते हैं तो हमको शांति की आवश्यकता की अनुभूति होती है, और जब हम निर्विकल्प अवस्था में होते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वो अनुभूति होती है हट के आधार पर होती है, और अभी जो अनुभूति है हमको उसकी वास्तविकता को समझने के आधार पर, समझ के आधार पर होती है। तो जिसके विषय में बाबा ने कल बात बोली थी विशेष, उस पर आप दिन विचार किया होगा, तो बाबा ने बोला था कल कि कुछ बच्चे हैं भावना के आधार पर चलते हैं और कुछ बच्चे जो हैं ज्ञान के आधार पर चलते हैं। तो भावना के आधार पर भी हमको अनुभूति होती है, बाबा हमको वर्षा मिलता है, लेकिन उसकी लिमिट है। ज्ञान के आधार पर हम वो वर्षा मल्टीप्लाई होता है, हम कई बार कई गुना उससे अनुभूति होते हैं। तो जो हमको ज्ञान की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए हमको आत्मा परमात्मा के गुण धर्मों का तो बहुत बहुत धर्मों का ज्ञान है और हम उनको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन ड्रामा के गुण धर्मों को भी हमको समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि आप देखें कि तीनों लोकों का और तीनों कालों का दृश्य हम अपने सामने इमर्ज करें तो हम परम धाम में जब होते हैं तो आत्मा निर्संकल्प होती है, लेकिन वहां हमको अनुभूति होगी तो वहां शांति की अनुभूति नहीं होगी। वो शांति का घर है, शांति का देश है, शांति आत्मा संत स्वरूप है, लेकिन वहां अनुभूति होगी। अनुभूति शरीर के साथ ही होती है। तो जब अभी हमारा जब बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, इस ज्ञान को धारणा करके हम अपनी मन बुद्धि को जैसे परम धाम में ले जाते हैं, बिंदु रूप में ले जाते हैं, तो हमको उस शांति और शक्ति की जो अनुभूति होती है वो अनुभूति विशेष अनुभूति है, जिसके लिए बाबा कभी कभी आपने देखा होगा कि अव्यक्तवाद राजा मुरली चलाते चलाते समय भी बीच बीच में लास्ट में बोलता है कि तुम 3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शरीर बन जाओ, कोई संकल्प नहीं चले। तो वो संकल्प उस स्थिति के लिए हम तो जितना हमारा अभ्यास होगा तो हमको अनुभूति होगी। और जहां दूसरी समाधि भक्ति योग के अंदर निर्विकल्प समाधि, कि हमारे अंदर कोई विकल्प नहीं हो, क्योंकि विकल्प से पाप बना है, संकल्प से पुण्य, निर्संकल्प अवस्था होती है तो हमारे पुण्य कर्म होते हैं। तो निर्संकल्प अवस्था भी हम कब धारण कर सकेंगे? जब हमको इस ज्ञान ड्रामा के ज्ञान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप देखें कि सतयुग से लेकर के भी जीवन को यदि आप विचार करेंगे तो सतयुग से ही हम इस सृष्टि में ट्रस्टी हैं। आप जो हर एक व्यक्ति आत्मा जो है जन्म लेती है, जन्म के साथ उसको जो साधन संपत्ति मिलती है और आगे बढ़ता है और शरीर छोड़ते हैं तो वो उससे हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। तो हम ट्रस्टी हैं, लेकिन हम उस पर अभी तक हम भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में तो विचार करने की बात ही नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में उसे करते हैं। लेकिन अभी बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया हुआ है जिसके आधार पे हम साक्षी बनते हैं और ट्रस्टी बनते हैं। तो साक्षी कब बनेंगे? जब हमको इस ड्रामा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और सबसे तीसरी समाधि जो है वो है शुभ संकल्प की समाधि। वो उसमें हठ योग में उसका वर्णन नहीं है। तो हठ योग का वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि शुभ संकल्प की समाधि के लिए क्या आवश्यक है? शुभ संकल्प की समाधि के लिए धारण करने के लिए हमको क्या आवश्यकता है? शुभ भावना। और शुभ भावना भी कम होगी। आप देखें बाबा बोलता है कि ये ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है और पार्ट अविनाशी है। तो इस ड्रामा के बहुत से गुण धर्मों को हम बुद्धि में रखेंगे तब हमारी हम ब्राह्मण बने हैं तो विष्णु का विष्णु पिता के बच्चे हैं तो विष्णु कल्याण हमारा कर्तव्य है। तो हमको विष्णु पिता के बच्चे अपने को समझेंगे, विष्णु कल्याण का कर्तव्य करने का संकल्प होगा और हमारी ड्रामा के ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारी अन्य आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प की दृष्टि रहेगी और शुभ संकल्प दृष्टि रहेगी तो हम उस कर्तव्य को संपन्न करेंगे। तो वो शुभ संकल्प की समाधि जो है इस ड्रामा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अपने इस ब्राह्मण जीवन में परमात्मा के साथ हमारा पार्ट है, उन सब बातों को बुद्धि में हमको रखना रखेंगे तो हम वो कर सकेंगे। तो जहां तक है ड्रामा को देखें, इस सृष्टि के खेल में, तो ये सृष्टि का खेल की एक एक बात को आप देखेंगे तो कितनी वंडरफुल है और कितनी एक्यूरेट है। इस सृष्टि की रचना को ही देखे जाए तो इतनी बेहद की रचना, जिसमें असंख्य आत्माएं पाठ बजाने वाली हैं, हर समय इतना बेहद का ड्रामा है, हर समय परिवर्तनशील है, इन सबको देखें तो इसकी रचना को ही आप विचार करें तो कितनी वंडरफुल है। साथ साथ ये नाटक सुंदर भी है, ऐसा नहीं है कि खाली नाटक में कोई दुख का ही पार्ट है, इस नाटक में सुख और दुख का दोनों का पार्ट है और ये नाटक बहुत सुंदर है और दिव्य भी है और अद्भुत भी है। देखा जाए तो सुखमय क्यों है, सुंदर है, क्योंकि इस ड्रामा में इसके नियम संयम हैं, वो इतने एक्यूरेट हैं, जिसमें किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी तरह का इनजस्टिस नहीं है, अन्याय नहीं है। तो हमको बाबा ने ज्ञान तो ड्रामा के दिया हुआ है, ड्रामा के ज्ञान को तो हम उतना समझ लेते हैं, लेकिन उस गुणधर्म उसके गुणधर्मों को भी हमको विचार करना पड़ता है। यदि हम विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि में वो गुणधर्म होंगे तो हम सहज ही अपनी अवस्था को उस हिसाब से बना सकेंगे जैसे कि चाहिए। तो जहां तक है ड्रामा को, बाबा कई बार बोलता है कि इस ड्रामा को कितना वंडरफुल है, आत्मा का पार्ट कितना वंडरफुल है, जबकि भगवान बाबा भी वंडर खाता है, क्योंकि बाबा श्री बाबा को वंडर खाने की अवस्था नहीं, क्योंकि पूर्ण ज्ञाता है, साक्षी है, लेकिन देखा जाए तो उसको भी वंडर लगेगा ही, क्योंकि को बाबा ने ड्रामा बनाया तो है नहीं और वो बना बनाया ड्रामा है, तो वो उसको विचार करेंगे तो इसमें जो इसके जो गुणधर्म है, एक एक चीज को हम देखेंगे, जड़ जंगम प्रकृति की एक एक चीज को विचार करें, प्रकृति जंगम प्रकृति को भी देखें, एक एक पेड़ पौधे जो है उनकी गुणधर्मों को देखें, उनके विकास को देखें तो कितना बने, एक जैसे कि अणु समान एक बीज है और उससे कितना बड़ा वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष के अंदर जो है उसके सब पत्ते हैं, उसके कैसे एक समान होते हैं, तो उसकी देखा तो बहुत जैसे वंडरफुल है। शरीर को देखें तो अनेक आत्माएं हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना शरीर है, उसकी अपनी अपनी रचना है, तो उसकी रचना कितनी वंडरफुल है, कर्तव्य गुणधर्म कितने वंडरफुल है। तो ये इसके वंडर्स को यदि हम विचार करेंगे तो भी हम उसका सुख अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि आज आप देखते हैं पाई पैसे का खेल देखते हैं, पाई पैसे का ड्रामा देखने जाते हैं, तो ड्रामा मनुष्य पैसा भी खर्च करते हैं, एनर्जी भी लगा देते हैं, समय भी देते हैं और उससे समझ है। लेकिन ये बेहद के ड्रामा को देखें तो उससे तो ये लाख करोड़ का उसका कोई गिनती भी नहीं कर सके, इतना वंडरफुल है। और इसके वंडर्स को हम विचार करेंगे तो इसके उसका आनंद अनुभव कर देंगे। तो सोचने की बात है कि ये बाबा ने हमको ये तो दिया है कि ये ड्रामा जो है हूबहू रिपीट होता है, उस बात को तो हम मान लेते, लेकिन बाबा ने उसके साथ हमको दूसरी बातें भी बोली हुई हैं। दूसरी बातें क्या बोली हैं कि बाबा ने बोला है कि ड्रामा कल्याणकारी भी है, क्योंकि इस ड्रामा में किसी हर आत्मा का कल्याण है और हर घटना जो है कल्याणकारी है, भले ही बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, कहीं आतंकवादी घटना हो जाती है, कहीं वो लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, या हमारे साथ किसी का व्यवहार हो जाता है, तो वो हम उस समय हमको दुख तो होता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी घटना जो है बिना हिसाब किताब के नहीं होती है, बिना अकारण नहीं होती है। तो अन्य आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब अनेक जन्मों से सत्युग से हिसाब किताब बनते आते हैं, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर देखें तो हर क्षण हमारा हिसाब किताब बनता भी है और चुकता भी होता है, क्योंकि सत्युग में ही हम प्रकृति के साधनों का उपभोग करते हैं, तो जिसके उपभोग के आधार पर हमारा प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब बनता है और आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब बनता है। तो जो प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनता है वो भी हमको चुक्तु करना पड़ता है संगम पर, और आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनता है वो भी चुक्तु करना पड़ता है। तो बहुत सी घटनाओं को जब हम देखते हैं कितनी घृणित होती है, टेरिकल होती है और होती है, तो उस समय हमारी बुद्धि जो है विचलित हो जाती है कि ऐसे क्यों होता है, हमारे साथ कोई व्यवहार होता है ऐसा क्यों हुआ, तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता को देखेंगे, उसकी गहराई से देखेंगे तो वो भी कल्याणकारी है और साथ साथ न्यायपूर्ण भी है, इसमें किसी भी आत्मा के कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, गरीब हो, अमीर हो, या बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं है। जो बात आत्मा सत्युग में पहले पहले आती है वो भी आधा समय जीवन मुक्त और आधा समय जीवन बंद में रहती है। तो और जो आत्मा इस कल्प के लास्ट में अभी आती है, अभी भी आ रही है, उनका भी जीवन पार्ट जो है आधे समय जीवन मुक्त और आधे समय जीवन बंद में होगा। तो प्लस माइनस दोनों को बराबर है और आत्मा प्लस माइनस को बराबर करके ही परम धाम जाएगी। तो किसी के साथ इंडस्ट्रित नहीं है। साथ साथ कभी कभी संकल्प आता है कि जब ड्रामा में हूबहू रिपीट होता है तो प्रसाद करने की आवश्यकता क्या है, तो प्रसाद क्यों करें? तो क्या है कि इस ड्रामा में हूबहू रिपीट तो होता है, लेकिन ये ड्रामा जो है हर क्षण रिपीट होता, हर क्षण परिवर्तनशील है। कोई भी एक क्षण भी एक दूसरे क्षण के बराबर नहीं मिलता, भले ही उसकी हमको अनुभूति जो है बाद में होती है, तो हर क्षण परिवर्तनशील है और साथ साथ गतिशील भी है। परिवर्तनशील और गतिशील में दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि परिवर्तन तो है कि इधर से भी हो सकता है, इधर से हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बैक भी हो जाता है, लेकिन इस ड्रामा का जो है इसमें रिवर्स गियर नहीं है। कोई भी गाड़ी जो है रिवर्स नहीं होती है, सदा आगे बढ़ती है। तो ये ड्रामा जो है सदा आगे बढ़ता है, गतिशील है। साथ साथ हूबहू रिपीट तो होता ही है, लेकिन इस ड्रामा के देखेंगे हर घटना जो है चक्रवत चलती है। कोई भी घटना, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, या हर घटना चक्रवत चलती है। ऋतुओं का है, दिन का है, ये सब चलती है। तो इन सब बातों को देखना पड़ेगा। साथ साथ ये ड्रामा देखा जाए तो कितना विविधतापूर्ण है। एक देखा जाए तो एक भी कण जो है दूसरे कण से नहीं मिलता है, एक व्यक्ति का पार्ट दूसरे व्यक्ति का पार्ट नहीं मिलता है, हमारा पार्ट भी एक समान सदा नहीं रहता है, एक क्षण के बाद दूसरे क्षण बदलता ही है। अरे अभी हम बना कुछ ही बहे, यदि हमको कुछ हमको समाचार मिल गया तो एकदम से बदलता है, हमारे शरीर पे एक मच्छर भी आके बैठता है तो भी परिवर्तन हो जाता है पार्ट। तो ये ड्रामा जो है परम विविधतापूर्ण है। इस ड्रामा की विविधता को हम देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके इन सब बातों को हमको विचार करना होता है कि ड्रामा में क्या क्या बाबा ने हमको बताया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो इन सब बातों को धारण कर, जितना जितना हम अधिक धारण करेंगे और उसको आगे बढ़ते जाएंगे, प्रसाद करते रहेंगे, तो हमारी आत्मा जो है उस सुख शांति आनंद की अनुभूति करेगी। और इस आनंद की अनुभूति जो होती है, ये इस अनुभूति के लिए हमको प्रसाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमको जैसे कि एक अति जैसे कि महत्वाकांक्षी भी नहीं बन जाना है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी बन जाएंगे तो भी हम दुखी हो जाएंगे। अति महत्वाकांक्षी कहता है कि हमको ये ब्राह्मण जीवन है सुख शांति आनंद की अनुभूति के लिए मिला हुआ है और हम इसकी सुख शांति के आनंद की अनुभूति कर भी रहे हैं, लेकिन वो हमको सदा नहीं रहेगी, क्योंकि अनेक जन्मों के हमारे हिसाब किताब हैं, पाठ हैं, वो सब हमको पूरे करने पड़ेंगे, तो वो सदा नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने कई बार बोलता है कि तुमको बाबा की याद चाहिए, लेकिन सदा काल याद रहे वो अंत समय होगी। तुमको अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, लेकिन सदा काल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो अंत में ही हो पाएंगे। तब तक ये पद हमारा, जब तक यदि हम सदा काल बाबा की याद हो जाए, सदा काल आत्मिक स्वरूप स्थित हो जाए, तो फिर हमारा शरीर ही छूट जाएगा, क्योंकि हमारा पार्ट ही पूरा हो जाएगा। तो वो सदा काल नहीं होगा। सदा काल के लिए हमको पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा, पुरुषार्थहीन नहीं बनना है, क्योंकि इस ड्रामा को समझने के लिए पुरुषार्थ है। और इस ड्रामा में हमको बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है सुख शांति आनंद का अनुभूति के लिए, उस अनुभूति को करने के लिए पुरुषार्थ है। तो हम पुरुषार्थहीन तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, इसमें कोई भी आत्मा कभी भी पुरुषार्थहीन नहीं हो सकती है, कर्म के बिना रह नहीं सकती है। लेकिन हमारे में जो है पुरुषार्थ जो है अच्छे के लिए हो, अब आगे बढ़ने के लिए हो, तो उसके लिए भी हमको पुरुषार्थ करते रहने के लिए हमारा संकल्प है, तो हम करते ही रहेंगे। इसलिए इस ड्रामा के बहुत से दोस्तों का ऐसा संकल्प होता है कि इस ड्रामा को हम سمجھ لیتے ہیں یا جامع کے آہو بہو ریپیٹیشن کے سمجھ لیتے ہیں تو آتما پرشارتہین ہو جاتی ہے, لیکن واسطو میں اس جامع کو سمجھنے والا کبھی بھی پرشارتہین نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو جامع کو سمجھ لے گا وہ تو اس جو ہمارا اس برہمن جیون ہے اس کے سکھ شانتی آنند کو انوبھوتی کرنے کے لیے ستت پریجنشیل رہے گا, کیونکہ اس لیے وہ کبھی جیسے پرشارتہین نہیں ہو سکتا ہے. پرشارتہین ہوتا بھی ہے کوئی تو وہ بھی اس کے لیے کہیں گے کہ اس کا پارٹی کہیں گے یا کہیں گے کہ مطلب اس کی یہی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے بابا نے کئی بار بابا خود بھی بول دیتا ہے, حالانکہ بابا تو کہ جیسے کہ جس کی تقدیر میں نہیں ہے تو بابا بھی کیا کرے, تو جس کا جو پارٹ ہے اس پارٹ کے آج بھی بابا نے ملنی بولا ہے کہ اس ڈرامہ میں کوئی بھی پریورتن نہیں ہو سکتا, بابا کا بھی پارٹ ہے اور وہ پارٹ کے انوسار آتا ہے, اس کا گیان دینے کا پارٹ ہے, گیان دیتا بھی ہے اور ہم کو آگے بڑھانے کے لیے پرساد بھی کراتا ہے, ہم کو اس کے آسانی سے انوبھوتی بھی ہوتی ہے کیونکہ بابا, لیکن وہ ہی ڈرامہ کے اندر نودا ہوا ہے, تو ہمارا پرسارتھ پرالبدھ بھی ڈرامہ کے اندر نودی ہوئی ہے, لیکن اس کے کر کے ہم پرسارتہین نہیں ہو سکتے ہیں, یعنی ہم کو پرسارتہین ہوتے ہیں تو یہ ہماری کمزور ہے تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں, ہم تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو یعنی ہم ڈرامہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو ہمارا اپنے کرتویہ کا بھی ہم کو گیان رہے گا ہی کہ ہم نے سمجھا ہے تو ہمارا کرتویہ ہے, ہمارے انیہ بھائیوں کا بھی سمجھ میں آئے تو ہم سیوا بھی کریں گے ہی, خود بھی انوبھو کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم پرسارتہین کیسے ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو مدد کرنے کے لیے کتنا پرسارتھ کرتا ہے, کچھ بھائیوں کا آپس میں سمبندھ خراب ہو جائے بات ایک الگ ہے, ویسے جنرل ٹینڈنسی ہے کہ ہر بھائی جو ہے بھائی کی مدد کرتا ہی ہے, اپنا خود اچھا بننا ہے سکھ شانتی میں ہے تو ہمارے بھائی بھی سکھ شانتی میں رہیں, یہ پرسارتھ کرتا ہی ہے, تو سبھی آتما ہمارے بھائی ہیں تو ہمارا کرتویہ کیا ہے کہ اپنے کرتویہ رہے گا ہی, ہم اپنے کرتویہ کا ہم کو آبھاس ہوگا اور آبھاس ہوگا تو ہم اس کرتویہ کو کریں گے, تو اس میں کوئی ہے پرسارتی نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے ان باتوں کو بھی ہم کو بدھی میں رکھنا پڑے گا. تو یہ کھیل کتنا ونڈرفل ہے, اس کھیل کا آنند لینے کے لیے ہم کو اس کی سمجھ تو سمجھ چاہیے, سمجھ دھارن کرنا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں, لیکن ایک بات اور وشیش ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آتما جو ہم کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے, ہر آتما کے ساتھ کرم بھوگ اور کرم بندھن کا کوئی نہ کوئی آتی ہے, جب تک ہمارا سارا حساب کتاب چکتو نہیں ہوا ہے تب تک کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوگی, تو کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیس فل ٹائم ہے, جب ہمارے پاس کوئی کرم ہو کرم بندھن نہیں ہے, اس سمے ہم جتنا اشریری پن کا ابھیاس کر لیں گے وہ ہمارا اس سمے کرم بھوگ اور کرم بندھن کے سمے کام آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرانی دادیاں ہیں انہوں نے 14 سال تک جو ہے دادی کبھی کبھی تم دادی نے بھی انبھو سنایا کبھی کبھی دیکھا ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے تک بیٹھ کر کے وہ اشریری ہو جاتے تھے اور کوئی ادھر ادھر سنکلپ ہی نہیں جاتا تھا, ایسا ایسا انہوں نے پرسارتھ کیا ہوا ہے, تو وہ پرسارتھ ان کو آج کام آتا ہے. ابھی آپ دیکھو دیکھتے ہیں دیکھ ہی رہے ہیں ورتمان میں دادی گلزار ہیں اور ویسے بھی دیکھیں دادی کا لکھا ہے, دادیوں کو سب کا سنا ہی ہے کہ بھائیوں کا بھی سنا ہی ہے, تو ان کے پاس کتنی کتنی ان کے پاس اوپر جیسے کہ آیا, لیکن اس کے بعد بھی وہ شانت میں انہوں نے اس کو بیئر کیا, اس کی انوبھوتی اس کی جو جیسے کہ ایک کرم بھوگ تو آئے گا لیکن کرم بھوگ کی ویدنا سے مکت ہونا وہ ہم کو وہ پرساد کرے گا, کیونکہ ہمارے شریر پن کا ہمارا ابھیاس ہوگا تو کرم بھوگ ہوتے ہوئے بھی ہم کرم بھوگ کی ویدنا سے مکت ہو سکتے ہیں, اور وہ ابھیاس ہم کو پیس فل ٹائم پہ کرنا ہے, یعنی ہم نہیں کریں گے تو اس سمے ہم کو وہ نہیں ہوگا اور ہمارے کو اس کے جو درد ویدنا ہے وہ سہن کرنی پڑے گی. دوسری آتماؤں کے ساتھ حساب کتاب ہے, یعنی ہمارے ڈرامہ کے کرم کا تھیوری ہم نے برابر سمجھا نہیں ہے اس کو ہم نہیں سمجھا, تو جس آتماؤں کے ساتھ ہمارے حساب کتاب آتے ہیں تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں, اور دکھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, دکھی ہونے سے اس کا پرینام کیا ہوگا. بابا نے بولا ہم روز سلوگن بھی لکھے پڑے ہیں بہت سی جگہ کہ نہ دکھ دو نہ دکھ لو, سکھ دو سکھ لو, یعنی ہم دکھی ہوتے ہیں تو ایک تو ہم دکھی ہوتے ہیں تو دکھ کا جو وائبریشن ہم کریٹ کر رہے ہیں وہ انیہ آتماؤں کو بھی دکھی کرے گا, تو دکھ جو دکھ لینے والا दुख देगा जरूर, या डायरेक्ट दे। अच्छा, और दुख देने जो जब यदि हमारा किसी आत्मा से हमको दुख मिला है तो हम उसके प्रति हम जो रिवेंज करेंगे, तो उसके प्रति क्या करेंगे, उससे भी उस आत्मा के साथ हमारा जो आगे के लिए भी हिसाब किताब बन जाएगा। तो हम हिसाब किताब चुकतू करने की जगह हमारा नया हिसाब किताब बना भी लेते हैं। लेकिन जब हमारे को कर्म फिलॉसफी की अच्छी समझ रहेगी तो हम उसको उस समय सहन करेंगे, सहज भी सहन कर रहे, कोई मजबूरी नहीं, सहन कर सकें कि हमने किसी से लोन लिया हुआ है और हमको उसको रिपे करना है, वो मजबूरी भी करें कैसे भी करें, लेकिन रिपे करेंगे तो रिपे हमारे ऊपर बोझा हल्का हो जाएगा, तो वो हमको जैसे कि शांति तो अनुभव कराएगा ना, तो वो हमको अनुभव होती है। हम शांति सहन कर लेते हैं, किसी के साथ हमारा कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब आता है तो वो आगे के लिए हमको वो शांति और सुख की अनुभूति कराता ही है नेचुरल। हमारा किन दूसरी आत्माओं के पास ये शुभ भावना रहेगी तो दूसरी आत्माओं की भी हमारे पास ये शुभ भावना रहेगी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि हम जहां जिसके प्रति दूसरी आत्माओं के पास जैसी भावना होगी वैसी उन आत्माओं की भी हमारे प्रति ऐसी भावना रहेगी। वर्तमान जगत के देखते हैं तो अब ज्यादा में तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम लोग जो है हम इस समय जो है राजनीति के हिसाब से भी देखें या देश के हिसाब से देखें विदेश के हिसाब से भी देखें तो बहुत सी बातें हम देखते हैं कि हम दूसरों को अपना शत्रु मान लेते हैं, और जब हम दूसरे को अपना शत्रु मान लेते हैं तो उसके अहित में हमको खुशी होती है और उसके हित में हमको दुख होता है किसी भी शत्रु को, और जब जिसको मित्र हम समझते हैं उसके अहित में हमको दुख होता है और उसमें हित में खुशी होती है। लेकिन इस विश्व नाटक को यदि आप देखें तो इस विश्व नाटक में ना कोई हमारा मित्र है ना कोई हमारा शत्रु है, क्योंकि सब आत्माएं इस देहन के नाटक में पार्टधारी हैं और अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। इसलिए हमको किसी के प्रति शत्रुता और मित्रता की भावना क्रिएट ही नहीं करना है। भाईचारे की भावना एक अलग चीज है, लेकिन शत्रुता और मित्रता की भावना क्रिएट करना अलग चीज है, क्योंकि जिसका मित्र होगा उसका शत्रु जरूर होगा, जिसका शत्रु होगा उसका कोई मित्र भी हमको कहीं बनाएगा ही। लेकिन भाई भाई की भावना जो बाबा ने बताई है, क्योंकि आत्मा आत्मिक स्वरूप में भाई भाई है, तो भाई भाई कोई स्थूल शरीर रूप से भाई भाई नहीं है। तो जब हम हमारा कोई शत्रु मित्र का हम किसी को समझ लेते हैं तो उसके प्रति हमारा ईर्ष्या द्वेष घृणा राग द्वेष अहंकार हीनता ये सब बातें आती हैं। और जो व्यक्ति राग द्वेष अहंकार हीनता या उसमें होगा वो कभी भी निर्संकल्प होकर के जो हम परम शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है, और ना वो कभी निर्विकल्प होकर के सत्य और वो कभी विश्व कल्याण का कर्तव्य भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने ही संकल्प विकल्प में दूसरों के अहित हिताहित में ही चिंतित रहेगा, संकल्प करता रहेगा, और वो अपने लिए जैसे कि देखा जाए तो हम किसी के भी यदि किसी का कोई गिर गया और हमने बोला कि ये गिर गया तो अच्छा हुआ, तो देखा जाए तो उस संकल्प से भी हमारा हिसाब किताब बनता है, क्योंकि हर क्षण हमारा जो भी संकल्प होता है वो हमारा हिसाब किताब बनाता है। तो हमको किसी भी आत्मा के प्रति उसके दुख में उसके प्रति अपना भाव अपना जैसे कि चेंज नहीं करना है, यदि हम चेंज करते हैं तो उन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब बनता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत से आप देखते हैं कि सामूहिक दुख दर्द भी आते हैं और कुछ व्यक्तिगत भी आते हैं, तो सामूहिक जो दुख दर्द का कारण क्या है कि हमने किसी के अहित को 10 लोगों ने एक साथ बोल दिया कि अच्छा हुआ वो उसका उसको किसी ने मर्डर कर दिया अच्छा हुआ, तो उसका मर्डर करने वाले उसका तो अपने हिसाब किताब था उसने किया, लेकिन हमने जो कह दिया कि अच्छा हुआ तो हमारा उसके साथ हिसाब किताब बन गया और वो हिसाब किताब हमारे को किसी न किसी रूप में चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब किताब बनते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा कि देखो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन तरह की आवश्यकताएं होती हैं, एक जो है आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, दूसरा आरामदेह की आवश्यकताएं होती हैं और दूसरा विलासतापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। तो जब हमारी आवश्यक आवश्यकताएं पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, उसको हमको करना भी चाहिए और उसको वो करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको खाने की आवश्यकता है हम खाना नहीं खाएं, वो अच्छा नहीं है, उससे हमारी एनर्जी लॉस होगी और हम आगे जो काम कहे वो नहीं कर सकेंगे। और कुछ जो है आरामदायक आवश्यकताएं होती हैं उससे एनर्जी मेंटेन होती है, वो भी हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको दवाई, हमको आवश्यकता है दवाई नहीं लेंगे तो हमको वो, तो हमको खाना खाना भी है तो वो भी करना है। लेकिन जब हम विलासतापूर्ण उसमें चले जाते हैं, अनावश्यक आवश्यकताओं को हम संग्रह में चले जाते हैं या उसका उपभोग करते हैं, तो उससे हमारा एक हिसाब किताब जो है नेगेटिव बनता है। इसके लिए एक अभी पिछली बार जब बाबा का दिन था उस समय जो है एक जो मोहिनीबन जो थी, हम तो यही सुना था, मोहिनीबन ने एक क्लास बाद में कराया तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बात तो वो उसमें हम उतना ना जा करके उन्होंने एक बात कही थी लेकिन उससे हम कम से कम शिक्षा तो ले ही सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू आप ये खाली धोती क्यों पहनते हैं और सब सारे बदन आपको कहकर, तो उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम इसको इसलिए पहनते हैं कि कम से कम ऐसे हैं कि इतना जो है हर प्राणी, हर जो, क्योंकि जिस दुनिया की जो संपत्ति जो है उस पर सबका अधिकार है और सब उसका उपभोग कर सकते हैं। यदि हम ज्यादा करेंगे तो उस इतना सब हर एक नहीं कर सकता है तो वो हमारे ऊपर बोझा हो जाता है। तो उन्होंने तो उस हिसाब से बताई, हम उस लेवल तक तो हमको नहीं जाने का है लेकिन फिर भी हमको इस बात का ध्यान रखना ही है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या मतदाय के हर और क्या हमारे अनावश्यक है। यदि हम अनावश्यक प्रकृति का उपभोग करते हैं तो वो उसका हमको कहीं ना कहीं उसको सहन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बाबा जैसे बोलता है कि अंत समय बहुत सी ऐसी बातें आएंगी तो उनका भी हमको ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखनी तभी रहेंगी जब हमारे पास जैसे कि 30 फुल टाइम है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास टाइम है तो उस समय हम उसको विचार करें। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी बोलता है कि हम जो सुनाते हैं तुम उससे विचार करो, विचार करेंगे तो वो हमारी उसकी धारणा होगी, यदि विचार नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। नहीं तो हम कभी भावना के आधार पर करते बाबा ने बस सुनाया है तो सही है, लेकिन वो भावना के आधार पर हो जाता है, वो अंधश्रद्धा के आधार पर। एक बार अभी मुरली में हम सुनते कि महीना डेढ़ महीना हुआ हुआ बावन मुरली हुआ कि खाली सत सत करना जो है भक्ति मार्ग का संस्कार है, ज्ञान मार्ग का संस्कार है कि हर चीज को रियलाइज करना, अंदर समझना और उसे विचार करना। तो हमको जो बाबा सुनाता है उन सब बातों पर विचार करें और विचार करके हम उस चीज को रियलाइज करें, तो रियलाइज करेंगे तो वो हमारे को समय पर काम करेगा। खाली और कई बार बाबा बोलता है कि युद्ध के मैदान में हो, अभी युद्ध के मैदान में हमारे पास खाली ढाल है और तलवार नहीं है, गदा नहीं है, तो हमारा क्या स्थिति क्या होगी? हम सबका एक दो बार तो बियर कर जाएंगे लेकिन हर बार तो बियर नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे हित होगा ही होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? देखा जाए तो हमको युद्ध के मैदान में ढाल भी चाहिए तो तलवार भी चाहिए, गदा भी चाहिए। तो ज्ञान जो ज्ञान की गदा है, ज्ञान की तलवार है, तो ये तलवार जितनी हमारी, जैसे बाबा कहता है कि उसमें ज्ञान का योग का जौहर भी चाहिए और उसकी समझ के चाहिए, तलवार की जितनी धार अच्छी होगी उतना काम करेगी। तो हमको ढाल के साथ साथ गदा और तलवार भी चाहिए। तो ये ज्ञान को समझने के लिए हमको जब समय है तब हम इस चीज को मनन चिंतन करके उसको जितना धारण करते जाएंगे उतना उतना हम इसको आएंगे और इसका ये जो ब्राह्मण जीवन है उसका सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे। हम तो कहेंगे इस एक शब्दों में ही देखा जाए तो जो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, तो बाबा ने बोला है तुम अशुक मासुक भी हो, तो बाबा ने क्या बोला है कि दुनिया के अंदर आशुक मासुक कहिए कहते हैं जैसे कि प्रीतम प्रीता होते हैं तो क्या उनका क्या होती है कि तुम गीत में भी है तुम हो तो पिया सब कुछ है बनना ही चमन बेगाना है। तो ये जो समय संगम का समय जो है इसमें हमारा परमात्मा के साथ पाठ है, हम उसको बजा रहे हैं, तो इसके जैसा सुख जो है कभी भी नहीं है न होगा। तो इस सुख का जितना हम अनुभव करें, भक्तों ने भी कहा है श्री कृष्ण के लिए कि कंचन हूँ कल धौत की धाम करील के कुंजन ऊपर बार, तो उनको भी बोला कि हमको कल धौत की धाम स्वर्ण के हमको महल नहीं चाहिए, हमको श्री कृष्ण का साथ चाहिए संग, हम तो हमको जो परमात्मा का साथ अभी हमारे साथ है परमात्मा का कोई परमात्मा भी कभी कभी ये भी हम नहीं सोच सकते हैं कि परमात्मा नहीं है, बाबा तो है ही है, साकार भी है जो अव्यक्त रूप में और निराकार भी है, तो दोनों ही हमारे साथ हैं। हम उनका साथ का जितना अच्छा अनुभव करते रहेंगे और उनके साथ साथ अनुभव करेंगे तो उसका सुख भी हम अनुभव करते रहेंगे, तो ये संग में भी जीवन जो है कभी भी भारी नहीं होगा। बहुत लोग जिस बात के प्रतीक्षा में रहते हैं कि जल्दी विनाश हो जाए, लेकिन आप लोगों में कौन सा चाहता है जल्दी विनाश हो जाए? वास्तव में देखा जाए तो जल्दी विनाश हम क्यों चाहते हैं? जो चाहते हैं वो उनको इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए वो जल्दी विनाश चाहते हैं। लेकिन अभी जो सुख जो है, बाबा ने कई बार बोल भी चुका है, बाबा बोला भी है, क्योंकि बाबा हर बात एक समय नहीं बोलता है। बाबा ने यह भी बोला है कि सत्य के देवी देवताओं की क्या महिमा करेंगे, वो तो उतरती कला वाले हैं। वास्तविकता को देखा जाए तो उनकी महिमा भी क्यों है, क्योंकि देवी देवताओं के साथ परमात्मा की बायोग्राफी और ब्राह्मणों की बायोग्राफी को मिला दिया है, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा करते हैं। वास्तव में देवी देवताओं के जीवन उनका अच्छा है, उनको धर्म नहीं है पत्नी, लेकिन वास्तविक उनकी महिमा का कोई बात नहीं। महिमा जो है ब्राह्मणों की है, परमात्मा की है, क्योंकि अभी हम परमात्मा के साथ कर्तव्य करते हैं, विश्व कल्याण करते हैं। भले बाबा कहता है वो पुण्यात्माओं की दुनिया है, लेकिन पुण्यात्माओं की दुनिया और पुण्य कर्तव्य दोनों अलग अलग है, क्योंकि हम आत्माएं पुण्य कर्तव्य अभी करते हैं जिसके आधार पर पुण्यात्माओं की दुनिया में जाते हैं, तो दुनिया तो पुण्यात्माओं की है, लेकिन वो कोई पुण्य कर्तव्य नहीं करते हैं। पुण्य कर्तव्य हम अभी संगम पे करते हैं, विश्व कल्याण का कर्तव्य जो है हम अभी संगम पे करते हैं, तो ये जीवन जो है पुण्य कर्तव्य करने का है, और जितना पुण्य कर्तव्य हमारा होगा उतना अन्य आत्माओं से भी हमको ऑटोमेटिकली दुआएं मिलेंगी और परमात्मा की भी हमको दुआएं मिलेंगी, तो हम इस जो पुण्य कर्तव्य का हमको जीवन मिला हुआ है उस पुण्य कर्तव्य में हम रहें और जीवन बचे। ओम शांति।